Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आप सब लोगों का आज के एकादशी के दिन 18 फरवरी के दिन श्री मदन टेर धाम में स्वागत है। इस जगह का नाम मदन टेर है। ये स्थान श्री वृंदावन में है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी हम लोग सब वृंदावन में आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 108 वन है ब्रज में और उसमें 12 वन भगवान को अति प्रिय हैं। उस 12 वन से वन में से श्री वृंदावन भगवान को अति प्रिय है। तो वृंदावन धाम जो है इसका विस्तार यहां से लेकर नंदगांव बरसाना तक होता है। उसमें गोवर्धन जमुना जी भी आती है। और श्री वृंदावन अगर आंख की तरह है तो देख रहे काजल लगा हुआ है आंख में, लगा है ना, वो कल का काजल है, अब तक हमने मिटाया नहीं उसको, क्योंकि वो प्रेम का काजल है। जैसे आंखों को काजल पूरी तरह से घेरता है ना, पूरा इट इज कवरिंग द होल आई फ्रॉम ऑल साइड्स एट द पेरिफेरी ऑफ द आई। उसी तरह से जमुना जी वृंदावन में ऐसे आती है और ऐसे घूम के चले जाती है। तो अगर वृंदावन आंख है तो जमुना जी काजल है, ऐसे तुलना की गई है। तो वृंदावन में बैठकर भगवान को पुकारना तो बड़े भाग्य की बात है। जन्म जन्मांतर के प्रयत्न करने से ऐसा भाग्य प्राप्त होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं बहुत लोगों के पास माला नहीं है, बहुत लोग जब भी नहीं करते। हमारे आपको विनती है, आज एकादशी का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। आज के एकादशी के दिन जिसके पास माला नहीं है वो सबको माला खरीदना है हमारे इस्कॉन के मंदिर से। और वृंदावन से हम लोग और क्या भेंट लेके जा सकते हैं? कोई लोग फोटोग्राफ लेंगे, कोई कुछ शॉल लेंगे, कोई सॉक्स लेंगे, कोई हाथ मोजा लेंगे, क्या कहते हैं उसको, ग्लोव लेंगे। पर वृंदावन की असली शॉपिंग ये नहीं है। सही शॉपिंग वृंदावन की जो है भगवान का नाम है। भगवान के विषय में किताब, भगवान के विषय में माला। हाँ, बीड बैग किधर है मेरी? विजन देखा यही है बीड बैग, ये झोली, हाँ जबकि माला, ये सबसे बड़ा जीवन का धन है। और बाकी सब धन जो है ना तो यही छूटने वाला है। इसलिए आप लोग इस धन को यहां से ले जाओ। और आज का दिन एकादशी का दिन भगवान का भजन शुरू करने के लिए, रोज का नियम शुरू करने के लिए बहुत पावरफुल दिन है। एकादशी का दिन इतना पवित्र है कि केवल एकादशी का व्रत करके राधा रानी ने भगवान को अपने वश में कर दिया। गर्ग संहिता में कथा आती है, सारी गोपियां राधा रानी को पूछती हैं कि आपके वश में कृष्ण कैसे रहते, हाउ इज इट दैट कृष्णा इज इन कंट्रोल ऑफ यू। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊंगी। और उन्होंने एकादशी महात्म्य उनको सुनाया। एकादशी महात्म्य का मतलब होता है द ग्लोरीज ऑफ एकादशी व्रत। और साल भर में 26 एकादशी आती है। सारे एकादशियों का नाम लेके उन्होंने अलग अलग वर्णन किया कि कैसे कैसे उसका व्रत करते हैं और करना चाहिए। ये गोपियों को समझाया, किसी आम आदमी को नहीं समझाया। गोपियां भगवान की बड़ी भक्त हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है, दिस इज द हाईएस्ट सीक्रेट दैट राजा रानी इज रिवीलिंग टू गोपीज, हाउ टू मेक कृष्णा योर्स, कृष्ण को कैसे अपना बनाना है। और उन्होंने कहा कि ये सब व्रत मैं करती हूं इसलिए कृष्ण मेरे वश में रहते हैं। तो एकादशी का व्रत का मतलब क्या है? हम बोलते हैं हम लोग चपाती नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, धान्य नहीं खाते हैं, पाले भाजी नहीं खाते हैं। ये एकादशी व्रत का एक अंग है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ एकादशी, नॉट टू ईट सर्टन आइटम्स। बट इज दैट एकादशी? नो, एकादशी मीन्स उपवास। उपवास मीन्स, उप का मतलब है नजदीक, क्लोज, एंड वास का मतलब है रहना। टू स्टे क्लोजर टू कृष्णा इज उपवास। अगर हम निर्जला उपवास भी रखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं, और दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, बिजनेस की, यहां की वहां की, सब झगड़ा करते रहेंगे, तो कैसा व्रत है वो? व्रत वो है जिससे हम हृदय से और आत्मा से भगवान के पास रहें। दैट इज एकादशी व्रत। एकादशी व्रत में किसी को गुस्सा नहीं करना है, कोई भोग की वस्तु का लाभ लेना नहीं है, कोई भोग लेना नहीं है। कॉन्स्टेंटली रिमेनिंग, रिमेम्बरिंग लॉर्ड, रीडिंग अबाउट द लॉर्ड, टेकिंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड, कीर्तन में भाग लेना, भगवान को पुकारना, भगवान के विचार में रहना, कम से कम सोना, अधिक से अधिक जगकर भगवान के नाम का जप करना। अगर दिन में 16 करते हैं तो एकादशी के दिन 25 करते हैं हम लोग। जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए वो उस दिन अधिक करना, ये उपवास है। फिर कोई व्यक्ति कुछ खिचड़ी खा के रहेगा एकादशी वाली, कोई व्यक्ति फल खा के रहेगा, ये तो बाहर की बात है, जितना होता है उतना करना चाहिए, लेकिन वो उसका मेन अंग नहीं है। उसका मेन अंग है विचार से, भावना से, आत्मा से भगवान के साथ और पास में रहना। दिस इज एकादशी। और उस एकादशी के दिन, आम दिन आप जितना जप करते हो और जितना लाभ आपको मिलता है, उससे भी कई हजारों गुना लाभ एकादशी को मिलता है। एकादशी की एक माला जप और अन्य दिनों का एक माला जप, इसमें बहुत अंतर है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो थोड़ा सा दुनियादारी का काम कम कर देते हैं और ज्यादा समय भगवान के लिए दे देते हैं। शास्त्र में लिखा है कि एकादशी के दिन रात को जगना चाहिए और रात भर जप और कीर्तन करके अगले दिन उपवास छोड़ना चाहिए। वो तो हमको मुमकिन नहीं, हम लोग शहर के लोग हैं, लेकिन जब तो कर सकते ना। कलयुग है, इसे कितना डिस्काउंट लेंगे हम लोग। अरे प्रभु जी कलयुग है, अरे प्रभु जी कलयुग है, व्हाट टू डू, हाउ कैन वी डू, हाउ कैन यू डू। प्रभु जी वी आर फैमिली पीपल, प्रभु जी वी आर टू वर्क, यू नो वी आर डॉक्टर्स। कितने बहाने बनाएंगे और बहाने बनाकर जाएंगे किधर? अगर बहाने बनाने हैं तो रहना इधर ही है। फिर बहाने बनाकर आपको इस दुनिया से एग्जिट नहीं मिलेगा भगवान के धाम में, और भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलेगी। एक्सक्यूजेस विल नॉट हेल्प यू टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। यू कैन गो ऑन गिविंग एक्सक्यूजेस, वैलिड एक्सक्यूजेस, जस्टिफाइड एक्सक्यूजेस, बट द रिजल्ट इज यू विल स्टे हियर ओनली। गॉड विल से यू हैव सो मेनी जस्टिफाइड एक्सक्यूजेस, प्लीज कंटिन्यू स्टेइंग हियर ओनली, प्लीज। व्हेन दिस एक्सक्यूजेस विल एंड, यू कैन कम टू मी। टिल यू हैव एक्सक्यूजेस, यू कैन हैप्पीली लिव हियर, हैप्पीली इन द इन्वर्टेड कॉमास, विद टू मेनी क्वेश्चन मार्क्स हियर एंड देयर बोथ साइड्स। तो प्लीज डू नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस, जस्ट टेक द माला एंड चैंट द होली नेम। You may be a Hindu, you may be a Christian, you may be Muslim, you may be having no religion, no problem. You may be black or white, you may be English or American or European or Indian or Bangladeshi, Pakistani, no problem. Goal of life of everybody, human being, every living entity is to love God and go back to God. You can't say, okay, I am black, so my goal is different. There is no different goal. It's only one goal. इसलिए मैं सबको विनती करता हूं, आज के दिन आपके पास माला नहीं है, माला खरीद लो और आज के दिन जप करना आरंभ करो। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जीवन दिया है। हमने खाना बनाना सीखा है, हमने नौकरी किया है, बच्चों को जन्म दिया है, उनको बड़ा किया है, बैंक में पैसा रख के कैसा उसका हैंडलिंग करना है वो सीखा है, कपड़े कैसे पहनने वो सीखे हैं, कहाँ क्या मिलता है वो जानकारी कर दिया है, सब कुछ किया हम लोग ने। लेकिन ये कब करेंगे? और ऐसे भी कहते हैं यू कैनॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, है ना? इसका मैसेज क्या है आपके लिए कि बुढ़ापे की उम्र में बहुत नई नई बात हम लोग सीख नहीं सकते, जितना समय जाएगा जीवन में उतना हम लोग हार्ड बन जाते हैं, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल, अनमोल्डेबल, टफ, अनचेंजेबल, वी बिकम लाइक दैट। इसलिए ज्यादा देर वेट मत करो, थोड़े से बाल सफेद हो गए हैं पूरा होने तक वेट मत करो, उसके बाद में कुछ नहीं होगा आपसे। मेरे पिताजी भी थे, वो बोलते थे कि अरे अभी तो आप जवान हो, तो हंसने खेलने के दिन है और ये कमाने के दिन है, अभी आप कमाओ, जब सब ड्यूटी खत्म हो जाएगी ना तब भगवान का भजन करो। बहुत बहुत विरोध किया हमको उन्होंने, लेकिन जब खुद बुढ़े हो गए तो मेरे घर पे थे, हाँ मेरी मौसी को मालूम है, 6 महीना मेरे घर पे थे, उनको बहुत दोनों लंग में बहुत टीबी हो गया था, मेरे घर पे थे 6 महीने, बहुत परेशान थे, बहुत बीमार थे, मैं उनका इलाज कर रहा था, तो मुझे उन्होंने बहुत पहले विरोध किया था। लेकिन उस समय जब वो बहुत बुढ़े हो गए, बीमार हो गए, तो मुझे बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा कि तुझे मैंने पहले समय पर भक्ति करने के लिए विरोध किया था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि मेरी उम्र में आज मैं फ्री हूं, लेकिन मैं कुछ भी भगवान का भजन नहीं कर सकता हूं। इतनी बीमारी है, इतना कष्ट है, इतनी चिंता है मन में, तो मैं अभी चाहते हुए भी और समय होते हुए भी जो करना चाहता था वो नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप जो अभी कर रहे हो जवान अवस्था में वो सही कर रहे हो, क्योंकि जवान अवस्था में जो कर रहे हो वही बुढ़ापे में कर सकते हो। मतलब कुत्ता जो पहले ट्रिक सीखा हुआ है ना वही ट्रिक बाद में कर सकता है, नया ट्रिक वो बाद में नहीं सीख सकता है। तो जीवन में जीवन का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य का मतलब क्या है, जो अंत समय तक करना है, शुरू से अंत तक, वो कैसे हम एंड में शुरू कर सकते हैं? जो शुरू से अंत तक करना है उसको शुरू से करना पड़ेगा ना, जो शुरू से एंड तक करना है उसको एंड में चालू करेंगे तो कैसे होगा, कैसे वो परिपूर्ण होगा? एमबीबीएस के एग्जाम देनी है तो लास्ट डे कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग? फर्स्ट डे से पढ़ना पड़ेगा, जो फर्स्ट डे से पढ़ा हुआ है वही एग्जाम में याद आएगा, जो लास्ट रात को जगकर पढ़ा हुआ है वो याद नहीं आएगा। इज दैट अ फैक्ट? आप सब लोगों ने परीक्षा दिया होगा, कोई एमबीबीएस दिया होगा, कोई नर्सिंग का दिया होगा, कोई और कुछ दिया होगा, यू ओपन द बुक फ्रेश न्यू बुक ओनली लास्ट डे ऑफ द एग्जाम? नो, यू ओपन इन द बिगिनिंग ऑफ सेमेस्टर, स्टडी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, रिवाइज अगेन एंड अगेन, और जो आपने शांति से अच्छी तरह से पढ़ा है वही आपको लास्ट डे में पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो भी आपको वो याद आएगा, क्योंकि आपने उसको समझ लिया अच्छी तरह से। वैसे ही जब तक शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है, जवान है, चुस्त है, उत्साहपूर्ण है, तब तक जो भी आप सीख लेंगे और समझ लेंगे वही आपको बाद में काम आएगा। जो डॉक्टर है उसको बोलेंगे 50 साल की उम्र में अभी आप इंजीनियर बन जाओ, नया एडमिशन ले लो और इंजीनियर बन जाओ, तो कर सकता क्या पढ़ाई? वो चाहे अपने जवानी में गोल्ड मेडल होगा उसका मेडिकल में, लेकिन वो 50 ईयर्स के बाद में क्या कर सकता है? तो मुझे आप बोलोगे अभी आप मैनेजमेंट का नया कोर्स करो एमबीए, मैनेजमेंट में अच्छी तरह कर सकता हूं लेकिन एमबीए कोर्स नहीं कर सकता हूं, मेरा पढ़ने का टाइम अभी निकल गया है, अब मैं खाली शास्त्र पढ़ सकता हूं, भगवत गीता, श्रीमद भागवतम, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, चैतन्य चरितामृत, वो अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले से पढ़ने का आदत लगा लिया है, इसलिए मैं पढ़ सकता हूं, नया कोई किताब अभी नहीं पढ़ सकता हूं, जिसको पढ़ने की हैबिट हो चुकी है उसको पढ़ सकता हूं, जो करने की हैबिट हो चुकी है वो कर सकता हूं। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान का नाम जप करने की हैबिट लगा लो, वही आगे आप कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते हो तो आगे नहीं कर सकते हो। तो वो आदमी क्या करेंगे मालूम है, मैंने देखा है बुढ़े लोगों को जब करते समय एक मंत्र तीन मणि घुमा लेते हैं आगे, फिर कभी एक मंत्र पे तीन मंत्र बोल लेते हैं, फिर कभी आधा मंत्र एक पे और दो मंत्र दूसरे में बोल देते हैं, क्योंकि हैबिट नहीं ना, वो प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करनी चाहिए उसके लिए। कभी हाथ से माला गिर जाती है तो ढूंढते हैं कहाँ गया मणि, हो अंदर गिर गया वो उसको ढूंढो। ये सब कुछ जो है ना आपको जल्दी से जल्दी सीखना है। देखो हमारा वो बालक बैठा है, क्या नाम है उसका,
मनोहर।
मनोहर को मैंने पूछा कि माला किधर है, बोलता है माला नहीं है मेरे पास। अभी ये किसका फॉल्ट है बताओ, आपको आज ही आज उसको माला लेके देना है। हाँ तो आपको उसके पास रखना है उसको, तब की भक्त लोग जप करेंगे तो वो आपके हाथ में जप करेगा। अभी उसको जप करना था लेकिन वो कह रहा है मेरे पास नहीं है, है ना? माला है लेकिन माले पे रखी हुई है। माले पे भी पता नहीं कहाँ रखी हुई है। तो जब शत्रु सामने आता है ना तो बंदूक अपने हाथ में होनी चाहिए, बोले बंदूक है लेकिन कपड़ में रखी है, व्हाट इज द यूज। एक हमारे बचपन में पिक्चर देखा था मैंने, तो इसमें हीरो विलन को बोलता है कि तुम मुझसे इतना गुस्ताखी कर रहे हो, मैं तुम गोली से उड़ा दूंगा। तो विलन बोलता है मेरे पास भी पिस्तौल है लेकिन यहां पर नहीं। क्या लाभ है उस पिस्तौल का जो तुम्हारे पास भी नहीं है। इसलिए ये हमारा पिस्तौल है, देखो किधर गया वो दिखाओ। हम लोग है ना ऐसे ऐसे जब करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम राम राम। शत्रु को पिस्तौल दिखाते हैं, भगवान को पुकारते हैं। शत्रु कौन है, माया, दुनिया का जो प्रलोभन है वो हमारा शत्रु है, उसको हम लोग बोलते हैं सामने मत आना, सामने मत आना, सामने मत आना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार ट्रेन में हम लोग जा रहे थे तो भक्त लोग ऐसे जब कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ पैसेंजर बैठे थे वो बोल रहे हैं कि ये ना 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 क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त ने उत्तर दिया कि हम जब कर रहे हैं तो मुंह से कृष्ण को हाँ बोल रहे हैं और पूरे चेहरे से माया को ना बोल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, नो नो माया नो माया, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत जरूरी है। हाँ थोड़ा आपको हंसाया मैंने लेकिन इम्पोर्टेंट बात को भूलना मत, हंसी में सब बात चली जाएगी हवा के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द होली नेम, भगवान के नाम के बिना इस दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है, दुनिया में ऐसे कोई पाप नहीं है जो करने के बाद आप भगवान का नाम लेकर उसको नष्ट नहीं कर सकते, इतने पाप भी नहीं कर सकते हम जितना पाप भगवान का नाम नष्ट कर सकता है। इसलिए पाप करके जब मत करना, जब करने का नियम ऐसा है, नियम ऐसा है कि गिव अप ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज एंड चैंट हरे कृष्णा। जब आदमी पाप मुक्त होकर जब करता है तो उसको जब का पूरा लाभ मिलता है, और जब का लाभ, प्लीज डोंट अंडर मिसअंडरस्टैंड, जब का लाभ ये नहीं है कि पाप नष्ट करना, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ चैंटिंग। जब का लाभ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जब करते किस लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं करते, वी चैंट जस्ट टू प्लीज द लॉर्ड। सम सिद्धिर हरितोषणम, जीवन की परिपूर्णता किसमें है, भगवान को संतुष्ट करने में, इसलिए उनका नाम पुकारते। मैं आपको सबको ब्रज में बैठकर हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस जीवन में आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम को स्वीकार करो, किसी को देने के लिए भी और लेने के लिए भी, भगवान के नाम के इतनी श्रेष्ठ कोई भेंट नहीं है, देयर इज नो गिफ्ट। मैं आपको पेन दे सकता हूं, केक दे सकता हूं, टोपी दे सकता हूं, लेकिन वो सब ये रह जाएगा, भगवान का नाम दूंगा तो आपके साथ जाएगा, जहां पर भी आप जाओगे आपके साथ जाएगा, मर जाओगे तो भी आपके आत्मा के साथ में वो चला जाएगा, क्योंकि तो आत्मा की वस्तु है, आत्मा के साथ जाएगी। इसलिए आत्मा की वस्तु को जमा करना शुरू करो, नहीं तो शरीर की वस्तु जमा करोगे, शरीर के साथ यही छोड़कर उसकी जलकर राख हो जाएगी और आप चले जाओगे ऐसी सुखी सुखी आगे। तो ये वन जो है बहुत पावरफुल जगह है, वेरी पावरफुल प्लेस, स्पिरिचुअली वेरी वाइब्रेंट। अभी वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हो गए, बहुत सारा भीड़ हो गया, रास्ता ट्रैफिक टी टू टा हॉर्न सब बजते रहते हैं, ऐसे पंछियों की आवाज आपको कहाँ आएगी? इतनी सुंदर पंछी लोगों का आवाज आ रही है, ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और आत्मा के लिए कैसे अच्छा है? क्योंकि पंछी भगवान का नाम पुकार रहे हैं। ये ब्रज के पंछी हैं, बॉम्बे के पंछी नहीं है। यहाँ का हर जीव राधे राधे कृष्ण कृष्ण पुकारते रहता है। यहाँ का हर पेड़ जो है, ये पेड़ ये मत समझो कि साधारण पेड़ है, ये पेड़ इनका तीन कैटेगरी है। एक कैटेगरी है कि स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, दूसरी कैटेगरी यह है कि बहुत सारे महात्मा साधु महाजन वृक्ष के रूप में ब्रज में आके भजन करते रहते हैं, और तीसरा इसका स्वरूप है कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब डिजायर ट्री, इनके सामने खड़े होकर आप कोई भी इच्छा करोगे तो वो पूर्ण कर देगा। आपको श्रद्धा होनी चाहिए खाली, बस जो आप फेथ। इसलिए आप अभी जब हमारा कथा खत्म हो जाएगा, सब पेड़ों को गले मिलो अच्छी तरह से और मन से उनसे प्रार्थना करो, प्लीज प्रे टू द ट्रीज, एम्ब्रेस देम एंड प्रे, प्लीज मेक मी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, हमें भगवान का प्रेम दो, हमें भगवान का भक्त बनाओ। जब राधा कुंड में राधा कुंड श्याम कुंड का रिनोवेशन हो रहा था, जीर्णोद्धार, उसमें कुछ पेड़ काट रहे थे वो लोग, तो स्वप्न में पांच पांडव आए, रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में आए पांच पांडव, और धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम पांचों भाई श्याम कुंड के किनारे राधा कुंड के किनारे पेड़ बनकर भजन कर रहे हैं, इसलिए हमको मत काटो, इसलिए उनको छोड़कर ऐसे कुंड बनाया गया। और हम लोग कल जाएंगे, जो लोग बचेंगे यहां पर जो चले जाएंगे तो चले जाएंगे, कल जो रहेंगे उनको हम वो पेड़ दिखाएंगे। अभी चार पेड़ नष्ट हो गए, एक पेड़ बचा है, वो भी शरीर छोड़ चुका है लेकिन उसका रेमनेंट वहां पर है, वो धर्मराज का पेड़ है, ये प्रूफ है इसका। हाँ? नारद मुनि ने भी कुसुम सरोवर के पास जहां पर हम कल जाएंगे वहां पर अशोक वन में बैठकर ध्यान लगाया था, एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में क्या देखा उन्होंने, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं वो पेड़ गोपी का स्वरूप धारण करके श्रृंगार करके रास लीला में प्रवेश कर रही है, और वही पेड़ नहीं इतने भी पेड़ थे वहां पर, सभी पेड़ रात के समय अपना रूप बदलकर गोपी बनकर श्रृंगार करके कृष्ण के आनंद के लिए रास में प्रवेश कर रहे हैं। उनका ध्यान टूट गया, अरे मैं कहां बैठा हूं, जैसे आपको लगेगा क्या है पेड़ है इसमें पत्ते नहीं है सूखा हुआ है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए ये सब ऋषि मुनि है, स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, ये कल्प वृक्ष है। हाँ, ये अपने अदृश्य स्वरूप में भगवान के साथ में लीला करते हैं, तो जो भी लीला करते हैं उनके आसपास में होती है, उसका सारा जो आध्यात्मिक सार है स्पिरिचुअल एसेंस उसको वो ग्रहण करते हैं। जैसे हम जैसे लोग उनके सान्निध्य में आते हैं तो वो स्पिरिचुअल एसेंस जो है वो हमको देते हैं, इसलिए हमको अलर्ट रहना चाहिए। These trees are not ordinary people. They are spiritual living entities. तो चैतन्य महाप्रभु आए वृंदावन में तो ये पेड़ जो है ना ये ऐसे गदगद होने लगी, तो started trembling with love. और कुछ पेड़ के शाखाओं में से पत्तों में से हनी प्रकट हो गया, मधु आनंद से ऐसे बाहर आ गया थोड़ा प्रेम से, लाइक हमारे आंखों से अश्रु आते ना वैसे पेड़ के पत्तों में से हनी बहने लगा, गदगद हो गए, कांपने लगे पेड़, और कुछ पेड़ों ने पूरा झुककर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। सोचो आप इसके बारे में, हमको दिखेगा नहीं कि हम लोग उसको योग्य नहीं देखने के लिए, लेकिन ये सुनना चाहिए, कम से कम कानों के माध्यम से सुनना चाहिए कि ऐसे भी होता है। इसलिए पेड़ों से मिलो आप, इनसे आलिंगन करो, प्रार्थना करो कि कल पर वृक्ष है, आज नहीं तो कल इनके सामने की हुई जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए इनके सामने खड़े होकर ये मत बोलना मुझे छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी दो, फ्लैट छोटा है बड़ा दो, मेरे पास दो घड़ियां हैं चार घड़ी दो, ऐसा मत मांगो। जो यहीं पर रहेगा ऐसी वस्तु यहां पर मत मांगो, यहां पर वो मांगो जो आपके साथ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। समझो हम लोग मांगने को आए यहां पर, हाँ भिक्षा मांगने को आए, लेकिन भिक्षा मांगने का भी साइंस होता है, क्या मांगना चाहिए और क्या मांगने पर क्या मिलेगा ये पूरा नॉलेज होना चाहिए, कौन देगा कौन नहीं देगा, किसके पास मांगना है, ये सब साइंस है। तो इवन टू बिकम अ बेगर इज नॉट इजी, यू हैव टू लर्न एंड टेक ट्रेनिंग, देन यू कैन बेग प्रॉपरली। सो दिस इज अ प्लेस वेयर इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेशल कोर्सेस इन बेगिंग, वेयर यू कैन टेक हाईएस्ट डिग्री इन बेगिंग एंड बिकम अ एक्सपर्ट बेगर एंड रिसीव व्हाट यू नीड टू रिसीव। क्या आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। यहां पर हम कृष्ण प्रेम के भिखारी हैं, कृष्ण प्रेम और भक्ति की भिक्षा मांगने को आए हैं, तो कहां किसको और कब और किस तरह से पूछना है और मांगना है ये सीखना है यहां पर आके। बाकी सब टोपियां उतार देनी है, डॉक्टर टोपी, हाँ पुरुष टोपी, धनवान टोपी, सुंदर टोपी, जो भी आप समझते अपने आप को मैं सुंदर हूं धनवान हूं पढ़ा लिखा हूं, ये सारी टोपियां यहां पर उतार दो और एक ही टोपी पहनो, आई एम द बेगर फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, दैट्स वन टोपी दैट वी हैव टू वेयर, दैट्स ऑल। वो टोपी को देख के आपको एंट्री मिलेगी। हमारे पास तो बेल्ट लगा है, बेल्ट हाथ में है, किसके पास बेल्ट दिखाओ, हाँ है ना, ये बेल्ट से आपको प्रसादम हॉल में एंट्री मिलती है। बाहर का कोई आदमी आएगा खड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे हाथ दिखाओ, तो बेल्ट रहेगा तो बोला ये बोनाफाइड है इसको एंटर करो साथ दे दो इसे। वैसे ही प्रेम और भक्ति का टोपी रहेगा ना तो गोलोक वृंदावन में एंट्री मिलेगी, नहीं तो वहां बोलेंगे चलो बाहर यमराज इनको ले जाओ, इनका अलग कमरा में इनका व्यवस्था करो। तो ऐसी सुंदर जगह पे आपको लेके आए हैं और बहुत समय यहां बिता रहे हैं, इसका कारण यही है कि आपको पता होना चाहिए कि श्री वृंदावन धाम क्या वस्तु है। यहां पर राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं, नित्य यहां पर लीला करते रहते हैं। समझो कोई प्राइवेट बातें हो रही है किसी की, बहुत इंपॉर्टेंट कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, तो सब लोग उसमें अंदर नहीं आ सकते हैं, उनको बोलेंगे आप लोग बाहर जाओ, प्लीज आप बाहर खड़े रहो, दरवाजा बंद करो, फिर अंदर मीटिंग होती है प्राइवेट मीटिंग। तो प्राइवेट मीटिंग के अंदर कोई आदमी बोलेगा अरे मुझे भी आना है, बोले बाहर खड़े रहो आप लोग को एंट्री नहीं है इसके अंदर। जैसे अभी हम लोग मीटिंग कर रहे थे कल की यात्रा के बारे में, तो मैंने बाकी लोग बोला आप लोग चले जाओ हम लोग बातें करके बाद में आ जाएंगे। तो वैसे यहां पर भगवान की प्राइवेट लीलाएं होती रहती है और फिर भी हमको एंट्रेंस दिया इधर, स्टिल वी हैव बीन अलाउड एंट्रेंस इन दिस प्लेस वेयर कृष्णा एंड राधा एंड गोपीज आर परफॉर्मिंग देयर कॉन्फिडेंशियल पास्टटाइम्स। इसलिए बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, धन्यवाद है आपका कि आपने हमको आपके प्राइवेट जगह पर एंट्री दिया। यहां पर कृष्ण भगवान गोपियों को लेकर एक बार लीला कर रहे थे, तो कामदेव है ना, कामदेव क्यूपिड गॉड ऑफ लस्ट, वो अपने पुष्प बाण और पुष्प धनुष लेकर सब जगह घूम रहे थे, जहां जहां औरत आदमी एकत्र रहते हैं वहां पर वो बाण मारते हैं। क्या मारते हैं बाण में, लस्ट, पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण और स्त्री का पुरुष के लिए आकर्षण, इसको लस्ट बोलते हैं। उसका बाण लेके वो सबको इंजोर करते रहते, इंजोर्ड। तो वो सोचा कि यहां पर भी आए, देखते कि लीला सा लड़का है, बहुत सारी सुंदर लड़कियां हैं उसके साथ में लीला कर रही हैं, ये सही जगह है, इनको बाण मारेंगे और काम वासना से विद्ध कर देंगे, ये विल इन्फ्लिक्ट देम विथ लस्ट। तो एक बार ऐसे ही वो गए थे शिवजी के पास और शिवजी महाराज तो पार्वती के साथ देखा उसने, तो उनको भी अपने बाण से मारना चाहा, तो शिवजी ने तीसरी आंख खोल दी, उसको भस्म कर दिया कामदेव को। कामदेव शिवजी को टच नहीं कर सका क्योंकि शिवजी महाराज जो है ना वो काम से परे हैं, इज बियॉन्ड आवर लस्ट। उनको कोई काम वासना से स्त्री के लोभ से प्रभावित नहीं कर सकता। पार्वती जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन पार्वती जी भी उनको मोहित नहीं कर सकती हैं। तो वो यहां पर आए, कृष्ण भगवान देखा कि अच्छे मौसम अच्छा है, यहां पर हम लोग उनको बाण मारेंगे, सबको लष्ट में विद्ध कर देंगे। लेट अस इन्फ्लिक्ट, वो अपने पत्नी को लेकर आया था, उसका पत्नी का नाम है रति देवी। दोनों यही करते हैं, जहां जहां आदमी औरत रहते हैं वहां पर बाण मारते रहते हैं। बाण दिखता भी नहीं, अदृश्य बाण रहता है, अंदर घुसता है और लोग यहीं पड़े रहते हैं दुनिया में, उसी के लोभ में, औरत आदमी के अटैचमेंट में यहीं रहते हैं। बाण अंदर घुसा रहता है, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। काम अयेशु क्रोध अयेशु रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापा, भगवान कहते हैं सबसे बड़ा शत्रु है ये जीव का, जो जीव को अनंत काल तक भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बांधे रखता है। तो जब एम लगाया अपना, तो अब देखते हैं ना, पहले एम लगाना पड़ता है ना, फिर मारना पड़ता है। तो एम लगा रहे थे भगवान के चेहरे पर, तो भगवान यहां से वहां लीला कर रहे थे, एक जगह पर स्थिर नहीं थे वो, यहां वहां से नृत्य कर रहे थे, गीत गा रहे थे, तो वो पकड़ नहीं पा रहे थे उनको। लेकिन जितनी बार निशाना लगाया, उतनी बार चेहरे को देखा, तो वो मोहित होने लगे उनका सौंदर्य देखकर, ये सारे ट्रेम्बलिंग। फाइनली जब भगवान के ऊपर निशाना लगाया उसने, तो उसके हाथ से धनुष और बाण फिसल गया, वो उसको पकड़ ही नहीं पाया, ना खींच पाया, ना पकड़ पाया, ना छोड़ पाया उसको। और उसके बाद में खुद वो मेल्ट हो गया, कामदेव जो है वो स्वयं पिघल गए, द लॉर्ड द क्यूपिड एंड हिज वाइफ बोथ ऑफ देम मेल्टेड जस्ट लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। तो भगवान का सौंदर्य उन्होंने देखा तो पिघल गए, बाण मारने का दूर बाण पकड़ ही नहीं सके हाथ में, फिसल गया बाण। तो साक्षात जो कामदेव है, जो सारी दुनिया को लस्ट के अंदर फंसा के रखता है, वो आकर यहां पर पिघल गया भगवान का सौंदर्य देखकर। तो हम लोगों को अगर काम वासना को डिफीट करना है तो क्या करना चाहिए, भगवान के चेहरे को देखना चाहिए, राधा रानी के चेहरे को देखना चाहिए, कितना सुंदर है वो। जब उनका सौंदर्य देखेंगे तो इस दुनिया का सौंदर्य हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा। हमारे अंदर दुनिया के लिए बहुत अट्रैक्शन है, स्त्री को हम देखते हैं, उसका चेहरा देखते रहते हैं, कि बाल देखते रहते हैं, वो आदमी को देखते रहते हैं, और सब कुछ देखते रहते हैं, दुनिया का नजारा बहुत अट्रैक्ट करता है हमको, धन दौलत अट्रैक्ट करती है। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव वस्तु है श्री कृष्ण, क्योंकि सारा सौंदर्य जो है वो उनकी तरफ से आता है, क्योंकि वो खुद सौंदर्यवान है। राधा रानी बहुत सौंदर्य संग्राग्नी है, क्वीन ऑफ ब्यूटी राधा रानी एंड श्री कृष्ण, इसलिए उनके चेहरे को देखकर हमको इस दुनिया के अट्रैक्शन को डिफीट करना चाहिए। यहां की और एक कहानी भी वैसे ही है, एक कहानी तो ये हो गई, यहां पर कामदेव पिघल गए, मदन उसका नाम है, मदन मतलब क्यूपिड गॉड ऑफ लस्ट, वो यहां पर हार गए, ही वॉज डिफीटेड कंप्लीटली, नॉट ओनली डिफीटेड, ओवरवेलमिंगली डिफीटेड, व्हाइट वॉश कर दिया भगवान। और एक कहानी ऐसी आगी है कि वहां भगवान के बंसी जो है ना, भगवान की मुरली, उसके अवतार हुए हैं, इनकार्नेशन ऑफ फ्लूट ऑफ कृष्णा, श्री हित हरिवंश, तो वो यहां पर भजन कर रहे थे। और भजन करने का इसलिए मैंने कहा कि यहां भजन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहां पर बहुत भजन किया है, इतना भजन किया है कि जितने खूंखार जानवर थे ना, जो शत्रु होते एक दूसरे के जन्म जन्मांतर के, जैसे कि शेर और हिरण शत्रु ही होते हैं, जैसे कि सिंह और हाथी, जैसे कि फॉक्स एंड अदर एनिमल्स, द एनिमीज कॉन्स्टेंटली दे आर किलिंग वन अनदर, वो सब लोग यहां पर मित्र बन गए उनके भजन के प्रभाव से, केवल भजन के प्रभाव, जहां भजन किया उसका इतना परिणाम हुआ वातावरण में कि सभी शेर सिंह हिरण गाय बैल हाथी घोड़ा सब लोग यहां पर गले मिलकर रहने लगे, कोई किसका वध नहीं कर रहा है, कोई किसको खा नहीं रहा है, सब लोग शांति से रह रहे हैं। इतनी कीर्ति फैल गई महाराज की कि यहां पर एक डाकू था, उसका नाम था नरवाहन, अच्छी कहानी है बहुत, सुनो आप जान, नरवाहन डाकू यहां का पूरा खतरनाक लीडर था, मतलब राजा नहीं था लेकिन सब फोर्स से उसने अपना बनाकर रखा था, ही वॉज इल फेमस नॉट फेमस। तो उसके कान पे खबर गई कि मुझसे ज्यादा अधिक कोई फेमस यहां बन रहा है, इतना फेमस बन रहा है कि प्राणी तक शत्रुत्व छोड़ के चल रहे हैं, इवन एनिमल्स आर नॉट फाइटिंग विद वन अनदर, इतना शक्ति उनके अंदर है। तो बहुत गुस्सा आता है उनको, मैं मार दूंगा उसको, मुझसे अधिक प्रसिद्ध कौन बन सकता है। तलवार लेके निकला, घोड़े पर बैठ के निकला और चलने लगा यहां तक आने के लिए। बीच में उसके मन में विचार आया कि अरे मैं तो इतना पावरफुल आदमी हूं, एक आदमी 10-10 आदमी को मार सकता हूं, तो एक फकीर साधु आदमी है, उसके लिए तलवार वगैरह क्या चाहिए, नहीं चाहिए तलवार वगैरह, तलवार फेंक देता है, घोड़ा भी छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है। कुछ देर बाद में उसके जूते के अंदर बहुत मट्टी और रेती आने लगती है, जमुना किनारा नहीं, जमुना किनारा चल रहा है, बहुत रेती घुसता है, तो जूता बहुत जूता रेती से भर जाता है, जूता भी निकाल लेता है, नंगे पैर चलने लगता है, बहुत आगे चलता है बहुत देर तक। तो उसको अभी देखो सुबह ठंड थी ना बहुत, अभी दोपहर में ऐसा निकाल देंगे हम लोग, गर्मी हो गया दोपहर को, गर्मी लगती है, तो पूरा राजवस्त्र उतार देता है, मुकुट उतार देता है, सब कुछ उतार देता है, लेकिन चल रहा है बहुत तेजी से, किधर है वो महाराज, उसको मार दूंगा मैं, ऐसे द्वेष से चल रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है कि एक चीज छोड़ रहा है वो, तलवार छोड़ दिया, घोड़ा छोड़ दिया, जूता छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, मुकुट छोड़ दिया, सब छोड़ के निकाल रहा है। जब यहां पहुंचता है ना फाइनली, तो केवल एक कोपिन रहती है उसके अंदर, लंगोटी, बाकी सारा वस्त्र निकाल लेता है वो, और गुस्से से आ रहा है, फिर भी क्रोध नहीं छोड़ा उसने अब तक, क्रोध और द्वेष जो है ना वो अभी तक जमा है उसके ऊपर, उसको पहन के आ रहा है जोर जोर। वो देखता है तो देखता है यहां पर कित हरिवंश गोस्वामी महाराज भजन कर रहे हैं, उसको गुस्से से देखने लगता है जोर जोर से, इसी को मारना है। तो हित हरिवंश गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मुझे को देख रहे हो, प्रभु को देखो, नरवाहन प्रभु निहार, वाई आर यू लुकिंग एट मी, लुक एट द लॉर्ड एंड अप्रिशिएट हिम एंड हिज ब्यूटी। तो वो हाथ दिखाते हैं, तो वहां मुड़के देखता है, राधा वल्लभ जी का दर्शन करता है, वो दर्शन करते ही तुरंत उसका द्वेष क्रोध सब खत्म हो जाता है। जैसे ही कामदेव यहां पर पिघल गए ना, वैसे वो भी पिघल जाता है, उसका शांत हो जाता है। और फिर हरिवंश गोस्वामी को मुड़के देखता है, तो दंडवत प्रणाम करता है उनको, आया था मारने के लिए लेकिन दंडवत प्रणाम कर रहा है उनको, अभी दंडवत मतलब साक्षात पूरा फ्लैट हो गया वो जमीन पर, पांव पकड़ के महाराज के, महाराज माफ करो, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं मेरा क्रोध और द्वेष कहां गया, इस क्रोध द्वेष को लेकर मैं यहां पर मारने को आया था, अभी वो भय नहीं, आपके लिए मुझे श्रद्धा प्रेम और आस्था निर्माण हो रही है। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसने प्रभु को निहारा, प्रभु को देखा उसने, प्रभु को देखते ही सारा उसका क्रोध द्वेष खत्म हो गया और भक्त बन गया वो। लेकिन प्रभु को देखने का भी तरीका होता है, हा? अच्छा पत्थर का मूर्ति है ऐसा मत देखो, प्रभु को देखो, हा? प्रभु पत्थर नहीं है। जाएंगे हम इस्कॉन के मंदिर में, बहुत सुंदर विग्रह है ठाकुर जी के, हम उसको स्टैचू नहीं बोलते हैं, देयर आर टू स्टैचूज, वन ब्लैक एंड वन व्हाइट, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते ठाकुर जी है, साक्षात राधा रानी है, कृष्ण है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, यू आर नॉट आइडॉल और अ स्टैच्यू, यू आर प्रत्यक्ष, यू आर रियल कृष्ण एंड राधा सिटिंग हियर, स्टैंडिंग हियर, गिविंग दर्शन टू अस, ये भाव होना चाहिए। तो इतना बड़ा खूंखार खूनी डाकू था, वो भी यहां पर साधु के आशीर्वाद से, उसके प्रभाव से, उसके वातावरण में आया, प्रभु को देखा तो भक्त बन गया। अभी आपको बताता हूं मैं कि उसने वो सब घोड़ा तलवार वो सब क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो साधु जहां था उसके वातावरण में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही होता ना मैग्नेट, मैग्नेट के दूर से आप रखोगे लोहा तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, और पास लाओगे तो फिर वो ज्यादा इंटरलिगेट मैग्नेटाइज्ड, लोह चुंबक के प्रभाव में आ जाएगा वो, द आयन पार्टिकल एज क्लोज इट कम्स टू द मैग्नेट इट बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, टोटली मैग्नेटाइज्ड, उसकी दिशा बदलती है पूरी इमीजिएटली। तो वैसे ये मैग्नेट यहां पर बैठे थे हित हरिवंश गोस्वामी, उनका सारा प्रभाव द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म वॉज देयर एंड ही वॉज एंटरिंग इन दैट, उसके अंदर प्रवेश कर रहा था। जैसे आया ना तो विरक्त होने लगा, वो तो पता नहीं चल रहा है, वो चप्पल छोड़ दिया, घोड़ा छोड़ दिया, तलवार छोड़ दिया, मुकुट निकाल दिया, सब निकाल दिया, एकदम कुपित पहन के एंड में आ गया वो, विरक्त बन के आ गया ना, उसको पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये उसके प्रभाव से वो सब छोड़ने लगा। और जब फाइनली साधु को देखा उसने, साधु ने उसको आदेश दिया, प्रभु को देख, आदेश का पालन किया उसने, तुरंत पालन करते ही उसका उद्धार हो गया। हम भी उसी जगह में बैठे हैं, हाँ, प्रभु को देखने के लिए बैठे हैं। वहां पर एक पेड़ है बड़ा, दिखता है यहां से, एक बड़ा पेड़ दिख रहा है आपको, वहां पर बहुत बड़ा पेड़ है, वही वो पेड़ है जहां पर प्रभु की मूर्ति उसने रखी थी। अरे हरिवंश गोस्वामी उस पेड़ के एक होल में बैठकर भजन करते थे, दूसरे होल में ठाकुर जी को रखा था, और तीसरे होल में भगवान की पूजा करने का साहित्य रखा था। वो बहुत बड़ा पेड़ था, अभी तो वो नहीं है, उसका जो है ना रेमनेंट है, रेमनेंट वो वहां पर है, उसके बाजू में नया पेड़ आया है, लेकिन जो पुराना पेड़ जो अभी गुजर गया है ना, उसका एक पार्ट वहां पर पड़ा है, आप देखो उसको बाद में। उस पेड़ के अंदर हित हरिवंश गोस्वामी राधा वल्लभ भगवान की सेवा करते थे, और इस राधा वल्लभ जी को जब उन्होंने देखा, नरवाहन जी भक्त बन गए। दूसरी कहानी है इस जगह, इसलिए एक इसका नाम क्या है, मदन टेर। यहां पर मदन क्यूपिड ने आकर कुछ कोशिश किया था कुछ करने का, हार गया बेचारा। तो अगर हमको काम वासना पर विजय प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू डिफीट लस्ट, देन वी मस्ट टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड हु इज मदन मोहन, जो कामदेव को भी वश में कर लेते हैं, उसका नाम मदन मोहन है, और मदन मोहन को भी एक व्यक्ति वश में कर लेती है। इसकी कहानी मैंने इस कथा की शुरुआत में बताई आपको, इसका नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी, जो राधा रानी है। हम लोग क्या करते हैं, हम कृष्ण का सहारा लेने के पहले राधा रानी का सहारा लेते हैं, उनका सहारा लेने से कृष्ण का सहारा मिल जाता है, दोनों का सहारा मिलने से फिर हम लोग यहां से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है उसके लिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री, क्या बोलते हैं आजकल, बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट कॉल्ड, हाँ प्री एग्जाम होता है ना कुछ आजकल, मेडिकल में जाने के पहले क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो मैं तो मेडिकल में प्रवेश नहीं किया है, उसमें प्रवेश करने के लिए एक एग्जाम दे रहे हैं, है ना, एंट्रेंस एग्जाम। उसके पहले एसएससी करना पड़ता है, 10th ग्रेड, उसके बाद 12th ग्रेड करना है, उसके बाद में और एक टेस्ट देना है, तो टेस्ट में पास हो गए तो मेडिकल में एंट्री करेंगे, उसके बाद में मेडिकल के बहुत सारे एग्जाम देना है, फिर डॉक्टर बनेंगे। बहुत लंबा सफर है, लॉन्ग जर्नी, क्या करने के लिए, MD या MBBS, ये चार अक्षर प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये जो डिग्री है हमारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत लंबा कोर्स है उसका, मे बी 1 लाइफ टाइम, मे बी 2 लाइफ टाइम्स, मे बी 100 लाइफ टाइम्स, वी डोंट नो, बट शुरुआत करना है कहीं ना कहीं। अभी वृंदावन में आए हैं कोई लोग, पहली बार आए हैं यात्रा करने के लिए, कोई स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, स्टार्ट द कोर्स राइट नाउ ऑफ डिवोशन टू गॉड, मे बी इन दिस लाइफ टाइम यू विल कंप्लीट, और मे बी इन नेक्स्ट लाइफ टाइम विल कंप्लीट, वी डोंट नो, वी प्रे फॉर यू दैट यू कंप्लीट इन दिस लाइफ टाइम ओनली, लेट योर कोर्स बी अ क्रैश कोर्स, स्मॉल कोर्स ऑफ दिस लाइफ टाइम, नॉट मेनी लाइफ टाइम्स, डोंट टेक कंसेशन ऑफ ओके आई विल कम बैक अगेन एंड डू द हाफ पार्ट नेक्स्ट टाइम, यू नो, ऐसा नहीं, डू इट नाउ, डोंट वेस्ट टाइम, ह्यूमन लाइफ इज फॉर क्रैश कोर्स, इंटेंस कोर्स ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, एंड पास द एग्जाम एंड गो बैक टू हिम, डोंट कम बैक अगेन, डोंट रिपीट द कोर्स, यू नो, पता ना इसको सेमेस्टर रिपीट करने को बोला है, ही इज नॉट क्लियर द सेमेस्टर, ही हैज टू कम बैक टू सेमेस्टर एंड क्लियर इट अगेन, डोंट बिकम अ फेल्यूर एंड रिपीट स्टूडेंट, बिकम अ सक्सेसफुल ग्लोरियस स्टूडेंट इन द कॉलेज ऑफ भक्ति ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
शुरुआत किससे की थी, जिनके पास माला नहीं है उनको माला खरीदना है, भूलना नहीं, कहानी के अंदर से भूल नहीं जाना है, जो बताया उसको याद रखना है। ये जगह जो है आपके लिए बेस्ट विशेष देने के लिए भी अच्छी जगह है, ये जगह भगवान का नाम जप शुरू करने के लिए भी अच्छी जगह है, जो पहले से कर रहे हैं उनको अधिक करने के लिए भी बढ़िया जगह है, ये जगह परिपूर्ण जगह है, यहाँ पर आप शुरुआत भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं, दूसरों को शुभकामना दे सकते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस। अभी आप 2-3 मिनट यहाँ बैठिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें भौतिक दुनिया के अट्रैक्शन से बचाइए और आपके चरणों में रख दीजिए। अपना कोरिया रांगा चरेने राखियो, गौरांगा तुम्हें मोरे दया न छाड़ियो। प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर ओन एंड कीप मी एट योर लोटस फीट, डू नॉट कास्ट मी अवे माई लॉर्ड श्री राधे श्याम।